Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
उन दोनों का पता ही नहीं चल रहा है, जीव और परमा, या इसमें जो बैठे हुए हैं पक्षियों के, क्योंकि पंख से उड़ के जाते हैं, यदि उनके पैदल जाते हमारे शरीर के तब उनका कोई ना कोई निशाना मिलता है, तो पंख से उड़ के जाते हैं इसलिए उनका कोई निशाना नहीं मिलता है। निशाना नहीं मिलने के कारण इतने धर्म, इतने पंथ, इतने झगड़े, सब कुछ इसी के कारण हो रहे हैं। दूसरा वर्णन करते हैं, पक्षी सामान्य अथवा सुपर्ण। पक्षी सामान्य अर्थात ये अच्छे पर्ण लीजिएगा, मतलब उनका गमन फीमन जो जीवात्मा परमात्मा है। और दूसरा बोलते हैं सामान्य पक्षी को भी आप ले सकते हैं कि उसकी समानता होने के कारण हमने उनको उपमा दी गई है। सयुजा अर्थात सयुजो सर्वदा संयुक्त, ये दोनों के दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, इतना ही नहीं संयुक्त, संयुक्त का अर्थ है एक दूसरे के बिना कभी इनका वियोग होना संभव नहीं है। जहां जहां भी जीवात्मा जाता है वहां वहां परमात्मा उसके साथ, कभी अकेले को छोड़ता है क्या? किसी भी योनि में जाए जीवात्मा वहां परमात्मा उसको कभी अकेला छोड़ता नहीं है, वहां रहता ही है। किसी भी योनि में वो नहीं बोलता है कि अरे तुम किसी सुअर की योनि में गया तो मैं वहां नहीं आऊंगा, ऐसा है क्या? अब यह है कि वो सर्वत्र वही भरा पड़ा है, वो आता भी जाता भी कहां है, इससे पहले वहां संयुक्त है वो, जहां जाना चाहता है जीवात्मा, जीवात्मा जहां जाना चाहता है जाना, स्वयं होकर चाहता नहीं है लेकिन उसको वहां जाना पड़ता है, वो जाना चाहता है। वो यदि उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसके अधिकार में भी होता तो फिर तो क्या करता कोई पता नहीं है। वो सब इति गुह्यतम शास्त्र अपने पास रखा हुआ है, किसको कहां भेजना है और भेजे बिना चले नहीं। वो जोक का उदाहरण देते हैं ना, हरी घास के ऊपर लंबी जोक रहती है, हरी हरी कीड़ी लंबी इतनी, तो क्या करती है ऐसी ऐसी पैर आगे के पैर उठाती है, आगे टेकाती है, फिर अपना पीछे का आधा अंग आगे लेती है, मैंने आधा अंग आगे लेने के लिए पहला क्या करती है, आगे का सहारा लिए बिना नहीं उठाती आगे का सहारा। इसी प्रकार शास्त्र में आया कि जलो कुवत जीव, शरीर छोड़ने के पहले आधा शरीर वहां गया रहता है उसका, आधा शरीर वहां गया, चाहे किसी में बीज के रूप में हो या डायरेक्ट हो, किसी भी रूप में हो कि उसको आधा शरीर वहां आश्रय के बिना छोड़ेगा कैसा, प्रारब्ध से आ ही जाता है वहां, इसको दिखाई देता है। इसलिए तो ना उसका जाना किसी को पता नहीं चलता, इसलिए तो पंख का दिया, उसको पता चलता है कि मुझे शरीर कैसा मिल रहा है। मरे मागुता जन्म धरी नाही विसावा क्षण भरी, तो कारण जो बोलते हैं एक क्षण भी इसको विश्रांति नहीं है, 84 लाख योनि घूमते घूमते परेशान हो गया लेकिन एक क्षण इस योनि के बिना विश्रांति लेना चाहता है तो नहीं ले सकता है, एक क्षण भर भी नहीं ले सकता है। मरे मागुता जन्म धरी, इधर मरण आ रहा है तो उससे पहला उधर क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है, तैयार है, इसलिए जातस्य ध्रुव मृत्यु। अब यहां जातस्य निश्चित ये नहीं बताया कि तुरंत, लेकिन दूसरे शास्त्रों में तो क्या कह रहे हैं, कोई तेरा फेरा नहीं है, वो तो 13 दिन आपके लिए कर्मकांड करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए आपकी पूरी की पूरी, वो 16 संस्कार के लिए आपका, उसको किसके लिए है, वो 16 संस्कार किए बिना उसकी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, वो एक अलग प्रसंग है। यहां से लेकर वहां तक ये संस्कार है उसके, वो संस्कार के कारण ये करना पड़ा, और वो हमारे लिए है क्या है? जो वरी अर्जुना तो बोध भेटे ना मना, तो वरी आओगे साधना भजावी चलागे। ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं अर्जुन जब तक वो बोध अहम ब्रह्मास्मि ये बोध नहीं प्राप्त होता है तब तक ये सब संस्कार कर्म कांड है, ये तुम्हें करना ही कर्म कांड से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए वो 13 दिन जो भी है अभी आज से प्रारंभ है, ये सब पितृपक्ष है, ये सब करना ही चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन वहां शास्त्र में लिखा हुआ है इधर जन्म यदि क्या होता है, यदि मृत्यु हो रही है उस समय ही दूसरे में वो प्रवेश हो जाता है, उसके बिना छोड़ ही सकता नहीं है। अब वो रहता है क्या रहता है, वो पौराणिक है, वेदांत का सिद्धांत अलग होता है, यहां हम लोग पुराण नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन वो कर्मकांड की क्या होते हैं, कर्मकांड का आचरण किए बिना नहीं हमारी स्थिति नहीं है। यदि आगे बढ़ना है अंतकरण की शुद्धि के लिए तो ये सब शास्त्र में लिखे हुए कर्मकांड करना ही पड़ेगा, और हम लोगों के लिए नहीं करना पड़ेगा। क्यों? जिस समय संन्यास लेते उसी समय सब, तो काराम जी बोलते जीते जी ही घट फिर ले, घट फिर घट कब फिरते पता है, चिता में जो लगा, तो ज्ञानी के लिए बोलते हैं ये जीते जी ही घट फोड़ के बम मार दिया तो आगे घट फोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई पुत्र आएगा और चिता के समय वो 3 फेरी मारेगा और उस समय घट फोड़ेगा, वो चिल्लाएगा, ये सब पहले हो जाता है किसको, ज्ञानी के लिए। लेकिन जब तक उस स्थिति को नहीं जाते, कितना जाने कितने जन्म हम लोगों को लेना पड़े वहां तक किसी को भी, तब तक ये कर्मकांड करना ही है। चलिए संयुजा मनी सका, दोनों संयुक्त है, कभी ये अलग होते नहीं। सकाया सकायो, सकायो का अर्थ करते हैं दो, समान अख्यानों समान अभिव्यक्तिकरणों, समान अख्यान और समान अभिव्यक्तिकरण, अर्थात इनका अख्यान समान है, इनकी अभिव्यक्ति भी समान है। माने दोनों की, दोनों मित्र की अभिव्यक्ति और इनका व्याख्यान समान ही है। क्या समान है? दोनों चैतन्य हैं, एक अविद्या को अपना लिया है, एक माया को अपना लिया है, तो कोई समान ही अज्ञान है और समान ही अभिव्यक्ति भी करण है, दोनों कहीं इधर उधर नहीं। क्यों? दोनों चेतनीय है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन दोनों का विचार करने लगेंगे, दोनों का समान ही है। केवल इतना है कि एक एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, लेकिन ज्ञान तो समान ही तो है। एक कर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तुम शक्तिशाली है और एक अपना भोजन के लिए कमाने की तो शक्ति रखता ही है, तो कुछ ना कुछ समानता ही है। इसलिए आख्यान अभिव्यक्तिकरण दोनों का समान ही होता है। किन दोनों का? दोनों मित्रों का, दोनों पक्षों का, एक जीवात्मा पक्षी और दूसरा परमात्मा पक्षी, दोनों का आख्यान दोनों का अभिव्यक्तिकरण सब समान ही समान है। एवं भूतौ संतौ समानं एकं वृक्षं, एवं भूतौ संतौ मतलब इस प्रकार होने पर, अर्थात ये दोनों समानी होने के कारण अभिव्यक्ति कारण समान, इसलिए आगे समानं बोल रहे एकं वृक्षं मतलब एवं भूतौ संतौ, एवं भूतौ मतलब दोनों का समान आख्यान, दोनों का समान अभिव्यक्तिकरण होने के कारण समानम एकम वृक्षम परिसस्वजात। आगे के लिए माने जब दोनों की अभिव्यक्ति समान हो रही है, दोनों का प्रगटीकरण समान हो रहा है, तो दोनों का समान अधिकरण ही होना चाहिए। दोनों का समान अधिकरण माने एक अधिकरण में रहना। जब दोनों का व्याख्यान दोनों का प्रगटीकरण जब समान हो रहा है तो दोनों का अधिकरण भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं एवं भूतो संतो, इस प्रकार दोनों समान अभिव्यक्तिकरण आदि होने के कारण समानम मानी समान अधिकरणम मानी एक अधिकरण में रहते हैं। वो कौन एक अधिकरण है? वृक्षम मानी एक वृक्षम ही अधिकरण है। जैसे एक घर में हम लोग रहते हैं, एक घर में रहने वालों को क्या बोलते हैं? समानम। समानम का अर्थ है एक अधिकरण में रहने वाले, यहां समान बोल दिया। और थोड़ा सा परिष्कार करते हैं तो समान अधिकरण क्या बोलते हैं? सभी व्यक्ति को, अभी हम यहां बैठे हुए इतने सब कैसे हैं, यहां के अनुसार समानम बोलिएगा और थोड़ा सा परिष्कार करेंगे तो समान अधिकरण बोलिएगा और दूसरी भाषा में एक अधिकरण वृत्ति कहिएगा। क्या है? एक अधिकरण वृत्ति। सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो एक अधिकरण वृत्ति दो कौन कौन है? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो एक अधिकरण है उसका क्या नाम है? जैसा एक अधिकरण हम इस समय बैठे हुए हैं, स्वाध्याय हॉल में बैठे हुए, एक अधिकरण हमारा। तो इन दोनों समान है तो दोनों का अधिकरण एक है, तो कौन अधिकरण है? शरीर। अभी शरीर न बोलते हुए शरीर ही है, इसको एक वृक्ष की उपमा दी। शरीर में और वृक्ष में कोई अंतर नहीं है। शरीर बोलने पर सीरियतेति शरीरम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम, ये सीरियते हो गए। और दूसरा वृक्ष की उपमा दे दी, मान वृक्ष की तुलना, शरीर की तुलना करने पर शरीर के अनुसार उसका व्याख्यान होगा। और वृक्ष की उपमा देने के कारण इसकी व्याख्यान कैसा होगा? वृक्ष के समान होगा, क्योंकि वृक्ष का समान कैसे? वृश्चित यदि वृक्ष, जिस जो कटता है, आप इसको कुलाड़ी के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, हम लोग का ऐसे एक्सीडेंट होता है वो तो बात अलग है, लेकिन कुछ हो तो डॉक्टर साहब बैठे हुए क्या करेंगे? किसान जो है काटने का हथियार दूसरा अपनाता है और डॉक्टर साहब दूसरा, लेकिन दोनों क्या करनी? एक एक बुद्धि पुरस्कृत काटते हैं और एक अनजान कुछ। तो ये वृक्ष की सम उपमा दे रहे, वृक्ष क्या करता है? घाव, वृक्ष की उपमा क्यों दे? वृक्ष के ऊपर घाव डालने पर घाव भर जाता है। अब आप ऑपरेशन करने पर हमारा घाव भरता है क्या? नहीं, इसलिए समानता हो गई। वृक्ष को तोड़ने पर कुलाड़ी से बीच में तोड़ दीजिएगा और एक दो चार पांच महीने के बाद में वो घाव भर जाता है। इसी प्रकार इसका भी घाव भर जाता है, इसलिए इस शरीर को किसकी उपमा दे दी गई? वृक्ष की उपमा दी गई। कहीं शरीर की उपमा मैंने शरीर, कहीं वृक्ष, अलग अलग बोल दिया। उसी की व्याख्या करते हैं, वृक्ष विवो छेद सामान्यात वि उच्छेद, अर्थात विच्छेद मनी काटना आदि सब समानीय है, नाश आदि होना, उच्छेद होना, वि उच्छेद, उच्छेद का अर्थ है नष्ट होना, नाश होना, समान है। जैसे वृक्ष नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार ये भी नष्ट भी होता है, वृक्ष जैसा कटने की अपना कटने का स्वभाव वाला होता है, इसी प्रकार ये शरीर भी कटने का स्वभाव वाला होता है। सामान्य वृक्षम शरीरम, वृक्ष कोई शरीर होने। अभी उधर क्षर भी बोल दिया था, छेद अपना जड़ आदि सब, ये सब समान ही है। परिषद स्वजाति, आगे शब्द है परिषद स्वजाति। परिषद स्वजाति का अर्थ है परि स्वक्तवंतो, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसका अर्थ करते हैं सम आश्रितवंतो, अर्थात समान रूप से एक अधिकरण में आश्रय लिए हुए हैं, आश्रय लिए हुए। कहां पर आश्रय लिए हुए हैं? शरीर में, वृक्ष में। वृक्ष कौन लिए हुए हैं? जीव और, जीव और परमात्मा लिए। तो ये शरीर को वहां क्षेत्र बोलने पर मुझे एक गीत याद आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा। कबीरदास जी बोलते हैं ना, इस इधर तो क्षेत्र बोल दिया, क्षेत्र मानी खेती ना, हाँ खेत, और वहां उनका एक पद है, हाँ चदैया नहीं, खेती का पद है, मनुआ खेती करो हरि नाम की, मनुआ खेती करो हरि नाम की, पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, न लागे कवड़ी दमड़ी मनुआ खेती करो हरि नाम की। मन के बैल चौदिशी भटके, मन के बैल चौदिशी भटके, रसी लगा गुरु ज्ञान की मनुआ खेती करो हरि नाम की, मनुआ
खेती करो हरि नाम की, कहत कबीरा सुन भय साधो, कहत कबीरा सुन भय साधो। भक्ति करो हरिहार की, भक्ति करो हरिहार की, मनुआ खेती करो हरि नाम की।
ये खेती तो हो गए ना, क्षेत्र खेती वृक्ष, मैंने इसको अनेक उपमा दे दी। मैं इसलिए बोला कि ये श्लोक, ये मंत्र जो हमेशा आप लोग कहीं पर भी श्रवण करते हैं तो इसके बाद में ना भूले कि इसके ऊपर ये खेती बोले, चाहे बकरी बोले, चाहे वृक्ष बोले, इसके ऊपर दो दो रह रहे, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। तयो हो अन्य हो, तयो हो उन दोनों में से अपना दो बैठे हुए हैं तो अन्य कौन है जीवन में, अविद्या काम वासना आश्रय लिंग उपाधिर विज्ञान आत्मा, अन्य का अर्थ हुआ अज्ञान, माने जीवात्मा। जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा दूसरा एक दो पक्ष ही है तो पहला है अन्य दे रहे हैं, जो खाता है अपना किए हुए कर्म का फल, पिप्पलमाती वाला है ना, तो बोलते हैं अन्य का अर्थ करते हैं अविद्या काम वासना, इन दोनों का आश्रय, तीनों का अविद्या काम कामना आदि सभी का जो आश्रयभूत कौन है, लिंग उपाधि शरीर, लिंग माने सूक्ष्म शरीर, और उसका नाम होता है विज्ञान आत्मा, लिंग शरीर जिसके द्वारा होता है, ऐसा वो जीवात्मा है। वो क्या करता है, पिप्पलम, पिप्पल का अर्थ होते हैं कर्म फलम। कर्म फल क्या है, सुख दुख लक्षणम कर्म फलम। सुख दुख किसमें रहते, सुख दुख जिसमें रहते है, जीवन है एक गांव, कभी धूप कभी छाव। सुख दुख यही क्या है, दोनों के दोनों कर्म का फल है, और एक कर्म के फल का नाम क्या ले लिया, पिप्पलम। मान ये गांव है शरीर, गांव मैंने किस गांव में सुख दुख भोगना है, किसी गांव में जाने पर कुछ ना कुछ मिलेगा ना, तो ये गांव ही तो है, तो इस गांव बोल दिया। लेकिन इसमें दो ही का अनुभव होता है, एक सुख और दूसरा दुख, इसलिए तो यहां लिंग उपाधि बोल दिया। वह लिंग माने सूक्ष्म शरीर, क्यों भोगायतनम, सुख दुख भोग का अन्यतर जो शरीर का, ये शरीर किसको बोलते हैं, शरीर साधन है किसका, भोग का, माने सुख अथवा दुख दोनों में से एक का। स्वादु, साधु का अर्थ करते हैं अनेक विचित्र वेदना अस्वाद रूपम अति, अर्थात अनेक रूप से विचित्र, यहां अनेक विचित्र वेदना रूप से, ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है, नाना नखरे रहते हैं, क्यों बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बच्चे, आजकल की बच्चों को आप लोग अनुभव करते हैं, पहले हम लोगों की माताएं थाली परोस के रखती थी, खाने तो खाओ नहीं तो जाओ, और आज देखिए उसके पीछे तभी दौड़ रहे, तभी पीछे एक इतने नखरे हम अनुभव करते आज के बच्चे को, तो इतने नकरे कि परेशान हो जाता है, एक का दो घंटा लगता है कि वो माँ को उसको थोड़ा सा खिलाने में कष्ट हो जाता है, और पहले कोई माता को वहां पढ़ाई खाते है तो खा देता जा, यही स्थिति हम लोगों की थी। तो ये नाना विचित्र अनेक प्रकार से वेदना मनी दुख रूप सुख रूप से खाता रहता है, स्वादु फलमत। अति का अर्थ करते उपभोक्ते, मैंने उपभोग करता है कैसे, अविवेकता, अर्थात इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर रहकर ये सुख दुख कर्म का जो फल है खाता है, ये कैसा खाता है, अविवेक से। यदि विवेक से खाता है तो मुक्त हो जाएगा, विवेक से सुख भी आएगा दुख भी रहेगा, ये उसका स्वभाव है। एक विवेक से भोगा जाएगा और एक अविवेक से भोगा जाएगा। अविवेक से भोगने वाला यहां पर पक्षी ले लिया जीवात्मा, और दूसरा अनस्नन अन्यो, दूसरा है ना अन्य है, अनस्नन अन्य, अन्य कौन है, परमात्मा है, उसके लिए आ जाता है। न खाता हुआ, अनस्नन का अर्थ है न उपभोग करता हुआ, केवल साक्षी दृष्टा चिदानंद रूप शिवो हम, केवल साक्षी, मूंद व नई नकचु देखत नाय। संसार में कुछ हो रहा है तो अपने को अच्छा लगता नहीं, उससे अच्छा है कि आंख मूंद लिया तो दिखाई देता ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए कभी कभी संसार में ऐसा ही रहना पड़ता, देखते हुए भी अंधे का सोंग लेना चाहिए, संसारी आसावे असुनी नसावे, संसारी आसावे क्योंकि उसमें है, लेकिन असुनी असावे इसका मतलब देखने पर भी नहीं देखा है, क्योंकि इसी को कभी कभी संत महापौर दे मूंद वो नए नो देखत कछु देखत ने, अरे आंख मूंद लो कुछ आई नहीं है, सो क्या करना है संसार में, इस भाव को अपनाओ तब आनंद आएगा, नहीं तो देखोगे तो ये ऐसा कैसा हुआ ऐसा कैसा हुआ, तो फिर अपना लड़ते रहो उससे अच्छा ही साक्षी बनते रहो। तो ये साक्षी है, लेकिन हम साक्षी अलग बनेंगे, और ये साक्षी परमात्मा कैसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर, ऐसा ये स्वभाव वाला है। और ये करता क्या है बैठकर, अभी चाकसी थी, कासरी दीप्तो धातु है और उससे ये बनता है, तो अभी चाकसी थी मैंने सर्वम अपि पश्यन आस्ते, अर्थात दीप्तो मैंने प्रकाश करने वाला, अर्थात देखता है सर्वत्र प्रकाशित करता है, जैसे ये दीपक प्रकाशित करता है यहाँ, चाहे गप लड़ाते बैठे चाहे स्वाध्याय करते बैठे और कुछ भी करे, ये केवल प्रकाश देने का काम करता है, सही करने पर तुम करते रहो और गलत करने पर तुम मत करो ऐसा कुछ बोलता नहीं है, केवल करने वालों को क्या करता है प्रकाश देता है। इसी प्रकार सभी जीवात्माओं को अपने अपने कर्म का फल भोगने के लिए क्या देता है प्रकाश दे रहा है, और उस प्रकाश में कैसा जो चाहे वो करो, उसके लिए हमें छोड़ दिया अपना विवेक। इस प्रकार सर्वम पश्चन आस्ते सब तरफों देखता हुआ रहता अच्छी प्रकार से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।